मैं बिल गेट से मिला, वहां मैं रे कुर्ज़वील से मिला। रे कुर्ज़वील तो दुनिया के सबसे बड़े फ्यूचरोलिस्ट हैं।
हेलो एंड वेलकम टू द जोश टॉक्स पॉडकास्ट, वेयर वी स्पीक टू इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया। आई एम योर होस्ट सिद्धांत नाग, एंड टुडे वी आर स्पीकिंग टू अजय चौधरी, वन ऑफ द सिक्स फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ HCL, हु इज ऑल्सो करंटली द चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी and International Institute of Information Technology. Hello Ajay ji, welcome to the Josh Talks podcast. Kya aap hame apne journey aur career se jude success ke bare mein thoda sa bata sakte hain?
Jab main yaad karta hu ke is chote bade acche shahar bure shahar background of IAS officer wo sab ki background se mujhe kya mila, sabse badi cheez mujhe mili education, kyunki mere father ne mujhe डंडा मार मार के अंग्रेज़ी सिखवाई। क्योंकि जब मैं हिंदी स्कूल में था और मेरे को जबलपुर लाया गया तो वहाँ तो इंग्लिश स्कूल था, तो 3 महीने में मुझे एक फास्ट ट्रैक अंग्रेज़ी सिखाई गई और उसके बाद मैं हिंदी मीडियम से अंग्रेज़ी मीडियम में गया, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एज अ स्कूल, एंड द स्कूल वॉज फैंटेस्टिक। इट वॉज 150 ईयर ओल्ड स्कूल, क्राइस्ट चर्च। सो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। तो जो पढ़ाई है और एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका मेरे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और दूसरा कि मेरे फादर के जो वैल्यू सिस्टम्स थे उसका मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो वैल्यू सिस्टम सिखाती है और उसके बेसिस पे आप जब आगे जाते हो तो आप सही चीज़ें करते हो, गलत चीज़ें नहीं करते। तो मैंने देखा उनको कि भाई एक बार कोई उनको एक डब्बा लाया था, कहता ये मिठाई का डब्बा है, तो जब उन्होंने मिठाई का डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो नोट्स थे, ओके पैसे वैसे थे। तो वो कार उनकी बाहर जा रही थी, वो दौड़ के गए, कार के शीशे के बीच में से उन्होंने वापस फेंक दिया। नाउ दैट्स अ वैल्यू सिस्टम। वो सिखाया गया हमें बचपन में कि भाई गलत चीज़ें मत करिए।
अजय जी, HCL इज नाउ प्रेजेंट इन 52 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विद ओवर 225,000 एम्प्लॉयज। बट लुकिंग बैक, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी जर्नी से तुरंत याद आती हैं?
सो सबसे पहले तो हमारी कहानी शुरू हुई सिंगापुर में, क्यों उस समय हमारी कंपनी करीब 3 करोड़ की थी और सिंगापुर का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड था उनकी मेरा मुलाकात हुई शिवनाडर से कहीं, तो उन्होंने बोला कि आप लोग इंडिया में कंप्यूटर बना रहे हो, हमारे यहाँ सिंगापुर में तो कोई कंप्यूटर कंपनी है ही नहीं, तो अगर आप वहाँ आके कंप्यूटर बनाएंगे तो हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे। तो भाई हम लोग मान गए किसी तरह कि हम करते हैं, पर उसके पहले हम लोग ने जाके वहाँ मार्केट रिसर्च करी और पता किया कि हम कैसे कम्पीट करेंगे, ग्लोबल ब्रांड्स हैं वहाँ, हम कैसे कम्पीट करेंगे, वो लोग तो इम्पोर्ट कर रहे थे, हम वहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे पर हम कैसे कम्पीट करेंगे। तो हमने एक कहानी बनाई, हमने कहा रिसर्च पे हमको एक आंसर मिला, वो ये आंसर था कि लोगों को कंप्यूटर नहीं चाहिए, लोगों को कंप्यूटराइजेशन चाहिए, ओके तो उस बेसिस पे हमने वो पूरी कंपनी बना दी। उसका नाम हमने लिखा, नाम बनाया फार ईस्ट कंप्यूटर। इसलिए हमने ये नाम लिया कि उन दिनों अगर आप हिंदुस्तान बोलते तो कुछ नहीं बिकेगा वहाँ, क्यों, क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं था कि इंडिया के बहुत सारे लोग सिंगापुर वगैरह में जा चुके थे सॉफ्टवेयर के, जो अब है। उन दिनों हमारा सॉफ्टवेयर का नाम वाम कुछ नहीं था, जो अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर आप इंडियन हो तो यू मस्ट बी अ कॉर्नर शॉप वाला, पान बेचते हैं या कुछ यू नो छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, आप कॉर्नर शॉप वाले हैं, या तो आप रबर प्लांटेशन में काम करते थे, उस तरह के इंडियंस का यू नो इम्प्रेशन था सिंगापुर में। तो उसको कैसे दूर करें, तो हमने उसका कंपनी का नाम रखा फार ईस्ट कंप्यूटर्स। तो पहला तो हमने नाम बदल दिया। दूसरी चीज़ हमने क्या करी, जो कंप्यूटर था उसका भी नाम हमने चाइनीज़ रखा, क्योंकि वहाँ जो 85% पॉपुलेशन है वो चाइनीज़ थी, तो हमने उसका नाम रखा एबिकस, राइट। और इस तरह से हमने वहाँ पर कहानी शुरू करी। और उसके बाद हमने सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सबसे बड़ी PR एजेंसी दोनों को अप्लाई ले लिया। हमारे पास पैसे नहीं थे सब करने के, पर हिम्मत थी, तो हमने जाके PR एजेंसी को बोला कि भाई देखिए आप हमारी पोजीशनिंग करिए कि वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया, हम यहाँ आए हैं आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे, कंप्यूटर नहीं बेचेंगे। और दूसरा हमने जो कैंपेन बनाया, फुल पेज ऐड बनाया पहला, उसमें हमने हेडलाइन थी एफईसी सेल्स कंप्यूटराइजेशन नॉट जस्ट कंप्यूटर्स, और उसमें हमने पूरी कहानी बताई कि व्हाट डू वी डू, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे आपके लिए, स्पेशल बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे, सब कुछ देंगे, एक टेप देंगे जिसमें आपको पता चलेगा आप कंप्यूटर कैसे यूज़ करेंगे। तो 5 चीज़ें थी उस कंप्यूटराइजेशन में, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने करी उन दिनों, वो काफ़ी ब्रेक थ्रू था उन दिनों के लिए, हमने एक सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनाई मद्रास में, और वहाँ हम लोग सिस्टम स्टडी करके लोगों को भेजते थे इन्फॉर्मेशन, वो बैठ के उसकी प्रोग्रामिंग करते थे, वो सॉफ्टवेयर जो है बनाते थे। उन दिनों कम्युनिकेशन वगैरह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, इंटरनेट था ही नहीं, सो कैसे मंगाएं इसको, तो एक उन दिनों एक फ्लॉपी डिस्क होती थी कंप्यूटर्स पे, एक फ्लेक्सिबल डिस्क होती थी, उस पे ऊपर बन के सॉफ्टवेयर आता था, वो हमको सिंगापुर कुरियर कर दिया जाता था। कुरियर के टाइम वो एक्सरे के थ्रू कभी कभी ख़राब भी हो जाता था, वापस मंगवाना पड़ता था। तो इस तरह की कहानियों से हमारी कंपनी शुरू हुई। अब लोग बोलते हैं कि किसने सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनाई, लोगों को ये पता है कि TCS ने बनाई, इन्फोसिस ने बनाई, किसी को नहीं पता कि HCL ने बनाई थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कमी हमने उन्होंने करी, हमारे जो एक टेक्नोलॉजी के जो हेड थे वहाँ पर, उन्होंने एक टूल्स बनाए जिससे प्रोग्रामिंग कुड बी ऑटोमेटेड उन दिनों, आज तो सब बहुत ईजी हो गया है। तो हमने ये सब ब्रेक थ्रूज किए, उस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर आता था, उस तरह से हम कंप्यूटराइजेशन बेचते थे, और इसी तरह से हमारी वहाँ कहानी शुरू हुई। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ और बेचते हैं, कुछ और प्रोडक्ट लाते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने जाके सन माइक्रो सिस्टम से बात करी अमेरिका में, अपोलो कंप्यूटर से बात करी, फिर हमने अपोलो को सिंगापुर में लाए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी साथ लाए, और उसके बाद हमने सोचा चलो जाके चाइना खोलते हैं, चाइना बड़ी बढ़िया मार्केट है। बट उन दिनों चाइना वहाँ नहीं था जो आज है, बहुत ही पुराने ढंग का चाइना था। तो 1980s में मैं चाइना जाता था, 83-84 में मैंने जाना शुरू किया, और मेरे को फर्स्ट ऑर्डर जो मिला वो यूनाइटेड नेशन से मिला, कि एक बहुत बड़ा टेंडर था, उसमें हम लोग जीत गए। अब उसमें हमने जो प्राइस कोट करी वो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, तो हमारे कोई प्रॉफिट नहीं था। सो द रिस्क वी टोक वॉज गे वी विल बी द लोएस्ट, अदरवाइज हमें कौन पूछने वाला है। तो हमको वो ऑर्डर मिल गया, अब हमें ये पता करना था उसमें पैसे कैसे बनाए जाए। तो मैंने 3 लोगों को काम पे लगाया कि यू गो एंड बाय एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सोल्यूशन इस प्राइस पे, जिससे हमारा 30% मार्जिन बने। उन्होंने 2 महीने काम किया, 25% पे तो पहुंच गए। हमने कहा चलो बहुत अच्छा। तो इसी तरह हमारी बिजनेस शुरू हुई, चाइना में काम किया हमने, सिंगापुर में काम किया, मलेशिया में काम किया, यार बिल्कुल सिस्टम इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा काम किया।
इफ यू लाइक व्हाट यू आर हियरिंग एंड यू'ड लाइक टू हियर मोर इंस्पायरिंग टॉक्स लाइक दिस, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द फॉलो बटन एंड द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। एक यूनिवर्सल सच्चाई जो सब बिजनेसेस फेस करती हैं, है डिफिकल्ट डिसीजंस एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। आपने इन चीज़ों को नेविगेट कैसे किया?
शुरू में जब आप कंपनी शुरू करते हैं, टिपिकली 3-4 तरह की कंपनीज बनती हैं। कुछ होती है सिंगल फाउंडर कंपनी, जो सिंगल फाउंडर कंपनी है उसमें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि लोग सिंगल फाउंडर कंपनीज को फंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक तरह से लगता है कि वो अपना फैमिली बिजनेस बनाना चाहता है। तो ये काम तो आप करिए नहीं, अगर आप इस तरह में सिंगल फाउंडर बिजनेस शुरू करेंगे आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि 2-3 फाउंडर्स होते हैं, 3 फाउंडर्स होते हैं नॉर्मली किसी भी कंपनी में, छोटी जो कंपनी शुरू होती हैं 3 फाउंडर्स गुड नंबर। पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी होती है, जब आप बहुत सारे लोग साथ साथ शुरू करते हैं, आपको ये दिमाग में रखना है कि कहीं ना कहीं तो डिसएग्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आएंगे। बहुत सारी कंपनीज में लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि वी आर ऑल इक्वल, तीनों हम लोग इक्वल हैं, वो चलता नहीं है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए हु इज़ द कैप्टन। अगर कैप्टन नहीं है तो कंपनी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द कैप्टन, देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच ऑफ द पीपल, वो भी डिसाइड कर लीजिए। कोई करेगा R&D, कोई करेगा फाइनेंस, कोई करेगा सेल्स, और इस तरह की कैपेबिलिटी क्रिएट करिए अमंग द फाउंडर्स, विच इज़ वेरी कंपैटिबल, तो फिर क्या होगा कि आपकी सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाएगी। फिर भी आपके डिसएग्रीमेंट ज़रूर हो सकते हैं, तो उस डिसएग्रीमेंट के लिए आप लोग स्ट्रैटेजी शुरू से बनाइए। वो स्ट्रैटेजी शुड बी कि भाई आप एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम भी बना लीजिए, 10% जो है आपकी इक्विटी उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम में भी डाल दीजिए, जिससे अगर एक या दो फाउंडर्स का काम नहीं चला तो एक फाउंडर जैसे निकल के चला गया तो वो किसी और को भी आप फाउंडर बना सकते हैं फिर से, और वो इक्विटी जो है वो आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं या वो 10% से भी लेके उसको फाउंडर बना सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करने से आपका जो डिसएग्रीमेंट भी होगा वो आगे बढ़ के नहीं जाएगा। तो HCL ने हमने क्या किया, हमने बोला शिवनाडर तो हमारा कैप्टन था DCM में, उसी को कैबिनेट बना देते हैं। वहाँ से कहानी शुरू हुई। अर्जुन मल्होत्रा नंबर 2 थे, उनको नंबर 2 बना दिया। तो जो पूरी हायरार्की थी DCM की, उसको हमने HCL में रेप्लिकेट कर लिया, और उस तरह से हम लोग की डेवलपमेंट इसी तरह से हुई कि कंपनी में लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं होते थे। जैसे कंपनी बड़ी होती गई, हमने सबको फ्रीडम दे दिया कि भाई हुएवर वॉन्ट्स टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू। सो 1 or 2 ऑफ द फाउंडर्स लेफ्ट, दे स्टार्टेड देयर ओन थिंग, ठीक है। बाय द टाइम द कंपनी वॉज सो बिग इट डिडंट मैटर।
अजय जी, our listeners would really like to know if you have a guiding principle for your business and your career. Could you share a few of your insights with us?
Har kism ke startups ko ke to succeed you have to have the passion and belief in what you are doing. If you don't have the passion and belief in what you are doing, don't even start. The second point in this is that the journey is not linear. The journey will be up and down, up and down. There's nothing called linear journey in companies. Everybody, every startup thinks ke maine 4 saal mein 300 crore kar liye, main 10 saal mein 1000 crore karunga. Aisa nahi hota hai. Because environments impact your business. Kabhi COVID ho gaya, kabhi world mein kisi cheez ki shortage ho gayi, war ho gaya, ye ho gaya. Ye sab upar niche hota hai. To ye iske liye kya chahiye? इसके लिए चाहिए परसिवियरेंस, परसिवियरेंस इन व्हाट यू हैव यू आर डूइंग, एंड यू शुड हैव दैट बिलीफ एंड कंटिन्यू टू डू दैट, एंड डोंट गेट कैरिड अवे विद मनी, ओके, बी फ्रूगल। द लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेंशन, आई थिंक विच आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वो ये कि एज अ पर्सन यू हैव टू बी अ रेंजिस्ट, यू शुड नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैनी अदर थिंग्स beyond your vertical. So if your vertical is hardware or vertical is software, don't restrict yourself to usi knowledge mein aap baithe hue hain. Koop manduk ban ke nahi baithiye, aap jaiye aur bahut sari dusri bhi cheeze seekhiye jisse aapko ek world view mile. To maine kya kiya, maine kaha, maine jab main college mein hota tha to mujhko space mein bahut interest tha, theek hai. इस तरह से मैंने बहुत सारे इंटरेस्ट डेवलप किए अपने लिए। मेरे पास बहुत सारे पेन फ्रेंड्स होते थे, मैंने सिंगिंग सीखी थी स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा बहुत गाता था। अब मैंने जब रिटायर किया तो मैंने एक टीचर अपॉइंट किया, मैंने कहा मुझे सिंगिंग सिखाइए। तो हर चीज़ को मैंने इस तरह से बनाया जिससे मेरी एक रेंज में इंटरेस्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, आई बिलीव दे आर ऑल नर्ड्स हु आर कमिंग आउट ऑफ देयर। वॉट इज द सेंस इन प्रोड्यूसिंग मोर नर्ड्स? आप एक प्रॉपर वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को क्रिएट करिए, वो आप रेंज से क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द फॉलो बटन एंड द बेल आइकॉन टू कीप अप विद जोश। You could also click the 3 dots and then the share button to send a dose of inspiration and Josh to your friends and family. We hope that today's episode encourages you to take action and achieve your goals, and we'll see you in the next episode of the Josh Talks podcast with me, Siddhant Nag.